आठ मुक्तक दोहा। संस्कृत के आचार्यों ने मुक्तक को विभिन्न ढंग से परिभाषित किया है। उन परिभाषाओं में कुछ निम्नलिखित हैं। एक मुक्तकम वाक्यांतर निरपेक्षो यह श्लोक काव्यादर्श। दो मुक्तक मेत्रान पेक्षमेकम सुभाषितम तरुण वाचस्पत काव्यादर्श के टीकाकार। तीन मुक्तकम श्लोकम एवैकस्य मत्कारक्षम सताम अग्निपुराण। चार मुक्तक मन्ये नानालिंगितम पूर्वापर निरपेक्षेणाप ही येन रसचर्मणा क्रियते तदेव मुक्तकम अभिनव गुप्त ध्वन्यालोक लोचन। पहली परिभाषा में वाक्यांतर निरपेक्ष श्लोक मुक्तक कहा गया है। इसमें मुक्तक के बाह्य पक्ष का उल्लेख है, आंतरिक पक्ष का नहीं, इसलिए यह परिभाषा त्रुटिपूर्ण है। दूसरी परिभाषा में इतर की अपेक्षा न करने वाला सुभाषित मुक्तक माना गया है। तरुण वाचस्पत का सुभाषित शब्द बड़ा भ्रामक है। सुभाषित सुक्ति का व्य होता है। इसमें सुक्तिकार प्रायः जीवन के अनुभावित सत्यों का उद्घाटन नैतिक मूल्यबोध की दृष्टि से करता है। इन सुभाषितों का रसक्षम होना आवश्यक नहीं है, अतएव उन्हें काव्य की कोटि में नहीं रखा जा सकता। अग्निपुराण के अनुसार अकेले ही सहृदयों को चमत्कृत करने वाला श्लोक मुक्तक है। यह चमत्कार रस का पर्याय है। अग्निपुराणकार ने आत्मचैतन्य रस और चमत्कार को समानार्थक माना है। अभिनवगुप्त और कुंतक ने चमत्कार का प्रयोग रस के अर्थ में लिखा है। पंडित राजजगन्नाथ काव्य की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम रमणीयता च लोकोत्तराह्लाद जनक ज्ञान गोचरता लोकोत्तरत्वम चाह्लादगत चमत्कार पर्याय अनुभव साक्षी को जाति विशेष। कहने का तात्पर्य है कि काव्य शास्त्र में चमत्कार रस के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है, इसलिए अग्निपुराण की दी हुई परिभाषा सर्वथा औचित्यपूर्ण है। पर अभिनव गुप्त ने लोचन में इसकी जो परिभाषा दी है वह सर्वाधिक स्पष्ट और पूर्ण है। अन्य से अनालिंगित पूर्वापर निरपेक्ष होते हुए मुक्तक रसक्षम होता है। पूर्वापर निरपेक्षता मुक्तक की बाह्य विशेषता है तो चमत्कारोत्पादन की क्षमता उसकी आंतरिक विशेषता। मुक्तक की मुक्तता उसके अन्य से अनालिंगन में है, उसके अकेलेपन में है, पर उसे काव्य होने के लिए रसक्षम होना अनिवार्य है। किंतु मुक्तक की पूर्वापर निरपेक्षता को लेकर यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या मुक्तक पूर्वापर निरपेक्ष होकर पूर्वापर सापेक्ष नहीं हो सकते? हो सकते हैं। सूर सागर के पद क्या पूर्वा पर सापेक्ष नहीं है? पर सूर के पदों का यह वैशिष्ट्य है कि वे पूर्वा पर सापेक्ष होकर भी एक दूसरे से अनालिंगित या स्वतंत्र हैं। मुक्तकों के संबंध में विचार करते समय विचारे होता है कि उनका अन्य से आलिंगन या स्वतंत्र। इसी शर्त की रक्षा करते हुए यदि प्रबंध के मध्य में कोई श्लोक हो तो वह मुक्तक कहा जा सकता है। इसे अभिनव गुप्त ने स्वयं स्वीकार किया है। लेकिन मुक्तक को किसी वस्तु की संज्ञा या रूढ़ संज्ञा मान लेने पर कोष्ठ में मुक्त अन्य से अनालिंगित प्लस क प्रत्यय कोष्ठबंद प्रबंधांतर्गत श्लोकांतर से निरपेक्ष किसी रक्षक्षम श्लोक को भी मुक्तक मानना अभिनव गुप्त ने अस्वीकार कर दिया है। सूर सागर में प्रबंध विधान मिलता है फिर भी उसे प्रबंध काव्य नहीं कहा जाता। उसी प्रकार प्रबंध काव्य के बीच मुक्तक को पूर्णतः चरितार्थ करने वाले श्लोक या पद्य मुक्तक नहीं हो सकते। तेन स्वतंत्र या परिसमाप्त निराकांक्षार्थपि प्रबंध मध्यवर्ती न मुक्तकमित्युच्यते। आचार्य रामचरण शुक्ल ने मुक्तक और प्रबंध का भेद स्पष्ट करते हुए लिखा है, मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती। जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन का या उसके किसी अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि एक रमणीय दृश्य सहसा सामने ला दिया जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास। इस उद्धरण में शुक्ल जी ने मुक्तक को गुलदस्ता कहकर उसकी काट छांट तराश अर्थात शिल्प सज्जा की ओर जो ध्यान आकृष्ट किया है वह बहुत संगत है, पर प्रबंध और मुक्तक की प्रभावान्वित की चर्चा करते हुए एक को स्थायी और दूसरे को उतना ही स्थायी न मानना तर्कपूर्ण नहीं लगता। चंडीदास, विद्यापति, सूरदास और तुलसीदास के मुक्तकों को कम स्थायी कैसे माना जा सकता है। इन सभी कवियों ने कुछ मनोदशाओं के जो चित्र प्रस्तुत किए हैं वे अत्यंत मार्मिक और अविस्मरणीय हैं। इसीलिए तो कहा गया है, अमरुक कवेरेक श्लोक प्रबंध श्रोतायते, अमरुक के एक एक श्लोक पर शत शत प्रबंध निछावर हैं। इससे कम से कम इतना तो स्पष्ट ही है कि मुक्तक अतिशय रसक्षम और लोकप्रिय रहे हैं। ध्वनिवादियों के अनुसार मुक्तकों की उदात्तता निसंदिग्ध हो चुकी है। मुक्तकों की रसार्द्रता उनके प्रसंग गर्भत्व और मर्मस्पर्शी खंड दृश्यों के चुनाव पर निर्भर है। प्रसंग गर्भत्व को दो प्रकार का होता है, रूढ़युक्त और रूढ़मुक्त या स्वतंत्र। रूढ़युक्त संदर्भ कल्पना के लिए सहृदय का शास्त्र विहित काव्य परिपाटी से अभिज्ञ होना आवश्यक है। काव्य रूढ़ियों की अधिकारी अधिक जानकारी मुख्यतः उन लोगों को होती है जो एक विशेष सांस्कृतिक परिवेश के प्राणी होते हैं। मुक्तक इन्हीं लोगों के बीच अधिक शोभन प्रतीत होते हैं, इसीलिए मध्यकाल के दरबारी वातावरण में इनके विकास का अच्छा अवसर मिला। काव्य परिपाटी से अनभिज्ञ पाठक निम्नलिखित दोहों की आस्वादन क्षमता से अपरिचित ही रह जाएगा। एक, पलन पीक अंजन अधर धरे महावर भाल, आज मिले सुभली करी भले बने हवलाल। दो, युवती जोन मैं मिल गई नयक न हो तिलखाय, सोंधे के डोरन लगी अली चली संग जाय। तीन, लाल अलव की कलर कई लख लख सखी सिहाती, आज काली मैं देखियत उर उकसौ ही भांति। इन दोहों का पूर्ण रसास्वादन वही कर सकता है जो खंडिता, अभिसारिका और अंकुरित यवना की परिभाषाओं से अभिज्ञ हो। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, बिथुरैयौ जावक सौ तिपग निरखि हसी गही गांस, सलज हँसौ ही लख लियो आधी हसी उसांस। यदि कोई इस रूढ़ को न जानता हो कि नायक प्रेम के प्रसंग में महावर लगाया करते हैं, उनके सात्विक भाव कुष्ठ में कंप से ऐसे ऐसे आघात लोगों के हृदय पर बराबर होते हैं तो कोई कुछ नहीं कह सकता। आधी हंसी उसास का तात्पर्य तभी खुलेगा। प्रसंग यह होगा कि कोई नायिका अपनी सौत के पैर में टेढ़ा मेढ़ा महाव लगा देखकर इस व्यंग्य से हंसी कि इसे महाव लगाने का भी शऊर नहीं है, पर उसके हंसने पर सौत कुछ लज्जित हुई और हंसने हंसने सी ही हो गई। नायिका ने तुरंत ताड़ लिया कि मेरे नायक ने ही इसके पैर में महावर पोता है, अंग स्पर्श जन्य कंप के कारण यह फैल गया है। इसलिए वह पूरी तरह हंसने भी न पाई, बीच में ही उसांस लेने लगी। पर मुक्तकों में संदर्भ कल्पना को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना उसका प्राप्य है। संदर्भ कल्पना काव्य का सहायक उपकरण है, वह स्वतः काव्य नहीं है। यह कल्पना जहाँ चक्करदार होगी वहाँ रूढ़ियों की प्रधानता काव्यात्मकता को बहुत कुछ गौड़ बना देगी। बिहारी ने चक्करदार संदर्भ कल्पना के अतिरिक्त स्वाभाविक संदर्भ कल्पना का भी सहारा लिया है और ऐसी कल्पना का उसमें आधिक्य है। एक उदाहरण लीजिए, मृग नयनी दृग की फरक उर उछाह तन फूल, बिन ही पिय आगम उमग पलटन लगी दुकूल। इसके पूर्व के उदाहरण में जिसमें सात्विक कंप की रूढ़ का सहारा लिया गया है, काव्य पक्ष दब गया है और उसके स्थान पर चमत्कारिता उभर कर सामने आई है। किंतु इस उदाहरण में आगमिष्यत पतिका नायिका ने प्रिय के आगमन का शुभ शकुन अनुमान करके अपने भूषण वसन का बदलना प्रारंभ कर दिया है। इस दोहे की संदर्भ कल्पना सहज है, चक्करदार नहीं है, इसीलिए इसका काव्य पक्ष अपने आप निखर आया है। स्वतंत्र संदर्भ कल्पना वहाँ की जाती है जहाँ काव्य शास्त्रीय रूढ़ियाँ काम नहीं देती, पर इन कल्पनाओं के लिए भी आवश्यक है कि सहृदय को काव्य विषयक दीर्घकालीन अभ्यास हो। नहीं अनहाई नहीं जाई घर, चित चिहुटयो तक तीर, परसी फुरहरी लय फिरती, बिहसति धसति ननीर। इस दोहे का काव्य सौंदर्य तभी प्रस्फुटित होगा जब यह कल्पना कर ली जाए कि नायिका के स्नान स्थल पर नायक आ गया है और नायिका उसकी दर्शन लालसा के कारण स्नान में विलंब करती है। यह संदर्भ कल्पना किसी काव्यरूढ़ से बंधी नहीं है। यूँ इस प्रकार की संदर्भोद भावना किसी तरह मौलिक नहीं कही जा सकती, पर इसको किसी खास परिपाटी के भीतर नहीं रखा जा सकता। इन संदर्भ कल्पनाओं के आधार पर ही बिहारी को रीत काल का प्रतिनिधि कवि कहा गया है। पर ये संदर्भ कल्पनाएं इस परंपरा में आने वाले प्राकृत संस्कृत के शर्तकों से भी मिलती हैं, इसीलिए बिहारी की रीतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। रह गई खंड दृश्यों के चुनाव की बात। खंड दृश्य जीवन के जितने गहरे मर्म का उद्घाटन करेगा वह उतना ही प्रभाव उत्पादक और जीवंत होगा। वह दृश्य किसी आख्यान या वृत्त पर भी आधारित हो सकता है और गहन जीवनानुभव पर भी। सूर तुलसी आदि भक्त कवियों के मुक्तक प्रथम कोटि में आएंगे तो बिहारी घनानंद के दूसरी को भेद। यो तो कई दृष्टियों से मुक्तकों का वर्गीकरण किया गया है, पर काव्य मीमांसाकार राजशेखर का वर्गीकरण सर्वाधिक संगत प्रतीत होता है। उनके मतानुसार मुक्तकों के 5 भेद हैं, 1 शुद्ध, 2 चित्र, 3 कथोत्थ, 4 संविधान कभू और 5 आख्यानकवान। जो मुक्तक इतिवृत्त विरहित हो वह शुद्ध के नाम से अभिहित होता है। यदि शुद्ध को विस्तार दिया जाए तो वह चित्र कहा जाएगा। कथा से उत्थित होने वाला मुक्तक कथोत्थ कहा जाता है। किसी रंजकतापूर्ण घटना या संविधान से संयुक्त मुक्तक संविधान भू की कोटि में रखा जाएगा। आख्यानकवान मुक्तकों में ऐतिहासिक आख्यान को कल्पना रंजित बना दिया जाता है। बिहारी सत्सई में सभी के उदाहरण मिल जाएंगे। शुद्ध मुक्तक, अंग अंग छवि की लपट, उपटत जाति अछेह, खरी पातरी यूतउ लगय भरी सी देह। इसमें कोई वृत्त नहीं है, नायिका का सहज सौंदर्य अपने आप चित्रित हो उठा है। चित्र मुक्तक, आए आप भली करी मेटन मान मरोर, दूरी करौं यह देखी है छला छिगुनिया छोर। इसमें मनोविकार को किंचित विस्तार दे दिया गया है। संविधानक भू, लड़िका ले बैके मिशनी लंगर मोठिक आय, गयव अचानक आंगुरी छाती छैल छुआए। इसमें धूर्त नायक की छलपूर्ण प्रेम क्रीड़ा का कथन है जो एक रंजक घटना है। आख्यानकवान, नाह गरज नाहर गरज बोल सुनायउ टेर, फंसी फौज की बंदी में हंसी सबन तनहेर। फौज के बीच खिली हुई रुक्मिणी का वर्णन ऐतिहासिक व पौराणिक आख्यान है। इसे कल्पना के मिश्रण द्वारा रमणीय बना लिया गया है। नहीं पराग हवाल वाले दोहे को कथोत्थ मुक्तक कहा जा सकता है, पर बिहारी में कथोत्थ और आख्यानवान मुक्तक कम मिलते हैं। इनमें शुद्ध, चित्र और संविधानक भू मुक्तकों की अधिकता है। भक्त कवि प्रायः आख्यानक मूलक मुक्तकों की सर्जना करते रहे हैं, पर भक्तेतर कवि प्रायः विशुद्ध भावजीवी होने के कारण आख्यानों का सहारा कम लेते थे। हाल, अमरू ऐसे ही कवि थे और बिहारी इन्हीं की काव्य परंपरा में पढ़ते हैं। दोहा, बिहारी सत्सई में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं सोरठा भी दिखाई दे जाता है और भाषा और संस्कृत की नई करवट के साथ ही छंद करवट बदलता है। अपभ्रंश भाषा साहित्य दोहा छंद साथ लेकर आया उस काल की दर्पपूर्ण वीरता पर उक्तियों कोमल श्रृंगारिक भावनाओं तथा नित परक सूक्तियों को बांधने में इसे पूरी सफलता मिली। अपभ्रंश का यह अपना छंद है। डॉक्टर हजाई प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, बाद में तो गाथा बंध से प्राकृत रचना और दोहा बंध से अपभ्रंश रचना का बोध होने लगा था। प्रबंध चिंतामणि में तो दोहा विधा में विवाद करने वाले दो चरणों के विवाद की कथा आई है, जो सूचित करता है कि अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहने लगे थे। दोहा अपभ्रंश के पूर्ववर्ती साहित्य में एकदम अपरिचित है, किंतु परवर्ती हिंदी साहित्य में यह छंद अपनी पूरी महिमा के साथ वर्तमान है। डॉक्टर द्विवेदी ने दोहे का संबंध आभीरों से जोड़ा है, क्योंकि अपभ्रंश भाषा भी आभीरों से संबद्ध है। सोरठा का संबंध सौराष्ट्र से जोड़ा गया है, इसे सोरठा दोहा भी कहते हैं। आभीरों गुर्जरों का सौराष्ट्र से पुराना संबंध है। अपभ्रंश के कवियों के बावजूद हिंदी के अनेक विशिष्ट कवियों ने इस छंद का प्रयोग किया है। मीरा और सूर के पदों में भी इनका विनियोग हुआ है। जायसी के पद्मावत और गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के बीच बीच में इस छंद का प्रयोग किया गया है। यह प्रबंध विधान में कड़ियाँ मिलाने के साथ साथ विराम का भी काम करता है। अपभ्रंश काव्यों में कई पंक्तियों के बाद धत्ता देने की रीति प्रचलित थी। पश्चिमी अपभ्रंश में दोहे का धत्ता देना प्रचलित भी था। पद्मावत और रामचरितमानस में यह धत्तात्मक रूप में ही प्रयुक्त हुआ है। रीत काव्यों के लक्षण निरूपण में दोहे का खूब प्रयोग किया गया है। कदाचित स्मरण की सुविधा से इसे अपनाना अधिक संगत लगा। कहीं कहीं तो उदाहरण के लिए भी इसका उपयोग किया गया है। हिंदी सतसइयों की परंपरा में तो इस छंद का एक छत्र राज्य है, पर साखी और दोहरा क्या है? गोस्वामी तुलसीदास ने एक स्थान पर कहा है, साखी शब्दी दोहरा कही किहनी उपखान। इससे पता लगता है कि साखी और दोहरा दोहे के से कुछ भिन्न हैं। पहले साखी साक्षी के अर्थ में ही प्रयुक्त होता रहा होगा, साखी करब जालंधर पाएं, किंतु बाद में जब साक्षी के लिए दोहा छंद प्रयोग में ले आया जाने लगा, तब साखी शब्द दोहा का समानार्थक हो गया। फिर भी विषय वस्तु की दृष्टि से साखी की अपनी विशिष्ट परंपरा बनी ही रही और दोहा इसमें रा स्वार्थे नहीं प्रयुक्त है, अन्यथा गोस्वामी जी अलग से इसका उल्लेख क्यों करते? भिखारी दास के मतानुसार दोहे के विषम चरणों में से एक एक मात्रा घटा देने से दोहरा छंद बनता है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। सामान्यतः दोहे का यही लक्षण है। ब्रजभाषा के प्रकांड पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर ने दोहे के कई लक्षणों को उद्धृत करते हुए उनमें अतिव्याप्ति अथवा अव्याप्ति दोष दिखाया है। उन्होंने उसका लक्षण निर्धारित करते हुए लिखा है, 8-3-2 प्रथम पद दूजे पद बसताल बसु में त्रय पर द्वय न गुरु यह दोहा की चाल। कवि और बिहार इसका अभिप्राय है कि दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में 8-3-2 और 8-9 पर मात्राएं अलग अलग हो जानी चाहिए, अर्थात 8वीं-9वीं से अथवा 11वीं-12वीं से मिलकर गुरु न हो जाए, पर 8-2 आदि पर शब्दों का पृथक होना आवश्यक नहीं है। मात्राओं की बाँट का क्रम इस प्रकार होगा, 8-3-2-8 धन गुरु। रत्नाकर जी के इस लक्षण निरूपण के आधार बिहारी सतसई के दोहे हैं। अन्य छंदों की भांति दोहा छंद भी निरंतर परिमार्जित होता रहा है। बिहारी सतसई में आकर उसे जैसे पूर्णता प्राप्त हो गई। थोड़े में बहुत अधिक कहने के लिए बड़ी कला कुशलता अपेक्षित होती है। दोहे की इसी विशेषता को लक्ष्य करते हुए रहीम ने कहा है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे माह, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमिट कूदी कढ़ी जाए। थोड़े में व्यापक अर्थ को समेट लेना दोहे की समाहार शक्ति पर निर्भर है, किंतु समाहार की क्षमता केवल सामासिक पदावली के प्रयोग पर नहीं आधारित है। बिहारी अपने दोहे के रूप भाव चेष्टा आदि का प्रभाव उत्पादक चित्र खड़ा करते हैं। इस चित्र के लिए उन्होंने जो फलक चुना है उस पर थोड़ी ही रेखाएं खींची जा सकती हैं। इन रेखाओं को खींच देने में ही प्रभाव उत्पादक ढंग से खींच देने में चित्र को प्रभु विष्णु और भास्वर बनाया जा सकता है। जिस तरह रेखा चित्रों में कुछ ही सार्थक लकीरों द्वारा चित्र को अर्थपूर्ण बना दिया जाता है, उसी तरह बिहारी के दोहों को भी गूढ़ अर्थगर्भ व्यापारों के चुनाव द्वारा व्यंजक बना दिया गया है। वस्तु या व्यापारों के चुनाव में बिहारी ने जिस कुशलता का परिचय दिया उसे निम्नलिखित दोहा में देखा जा सकता है। तंत्री नाद कवितरस सरस राग रतिरंग लोप सूचक चिन्ह तन भूषण अंजन द्रिगन पगनि महावर रंग वस्तु लोप सूचक चिन्ह चमक तमक हाँसी समक मसक झपट लपटानी व्यापार। अपेक्षित भाव की अभिव्यक्ति में बिहारी ने कुछ ऐसे वस्तु व्यापारों का चुनाव किया है जो प्रभावपूर्ण भावचित्र खड़ा करने में बहुत ही समर्थ हैं। इन वस्तु व्यापारों में जो क्रम स्थापन किया गया है वह भी प्रभाव उत्पादन में विशेष योग देता है। एक दोहा देखिए, सघन कुंज घन घन तिमिर अधिक अंधेरी रात, तऊ न दुरिहें श्याम यह दीप सिखासी जात। पहली पंक्ति में जो तीन वस्तुओं कुंज तिमिर अंधेरी रात को क्रम दिया गया है वह रात्रि की भयंकर कालिमा को उभारने में कितना सूक्ष्म है। इनके चुनाव में उन्होंने प्रायः तीन या चार ही वस्तु व्यापारों को चुना है, इससे अधिक के लिए दोहे में अवकाश ही कहाँ है। चाहे उपमा रूपक असंगत विरोधाभास दृष्टांत आदि अलंकारों का निर्वाह करना हो, चाहे अनुभाव हाव आदि का चित्रण, सर्वत्र गूढ़ अर्थगर्भ वस्तु व्यापारों को चुना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसे व्यापार शोधन का नाम दिया है उसे सत्ताई में सामान्यतः सर्वत्र देखा जा सकता है। कला के प्रति अत्यधिक सचेत होने के कारण इनके दोहों में संबंधी त्रुटि नहीं आ पाई है। समूचे हिंदी साहित्य में इतना सचेत कलाकार शायद ही कोई हुआ हो। आधुनिक हिंदी साहित्य में रत्नाकर जी में जो सचेतता दिखाई पड़ती है वह बिहारी से अनुप्राणित तथा प्रभावित है, पर जहाँ पहले की सचेतता युग के अनुकूल नहीं पड़ती वहाँ दूसरे की युग के सर्वथा अनुरूप बन पड़ी है। यही कारण है कि बिहारी का उदात्त रूप विन्यास शोभन प्रतीत होता है। उनके दोहों के निर्माण में जिस क्रमागत पद विन्यास कोष्ठ में रेगुलरिटी और अंग संगठना कोष्ठ में सिमिट्री का विनियोग हुआ है वह उन्हें रूपात्मक पूर्णता प्रदान करता है। जिस युग में बिहारी के दोहे निर्मित हुए वह युग अपनी अलंकृत तथा काव्यात्मक बारीकियों के लिए इतिहास में सदैव याद रहेगा। चित्र तथा वास्तुकला में सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाव भंगिमाओं को स्थापित करने में जिस नागरिक रुचि का परिचय मिलता है बिहारी के दोहे भी उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं।